हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरमान ने अनुराधा का खून करके सीधा ठाकुर मेंशन पहुँच गया था। उसने राजवीर को बताया था कि उसने एक हत्या कर दी है। किसकी हत्या, क्यों और कैसे की, ये उसने कुछ नहीं बताया था। केवल इतना ही कहा था कि मेरे लोनावला फॉर्म हाउस पर एक लाश पड़ी हुई है, जाओ जाकर उसे ठिकाने लगा दो और जल्द से जल्द इस केस को रफा दफा कर दो। इतना कहकर अरमान अपने कमरे में चला गया था। राजवीर उसे हैरत से जाता हुआ देख रहा था और किसी को फ़ोन करने लगा था। दूसरी ओर ज़ोया और अबीर उस लम्हे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे। ज़ोया जिस चादर में लिपटी हुई थी, अबीर से बातें करते वक्त उसी चादर में उसका पैर उलझ गया था और वो सीधी अबीर के ऊपर जा गिरी थी। अगर अबीर का फ़ोन नहीं बजता तो शायद वे दोनों उस पल एक हो सकते थे। अबीर के फ़ोन के बजने पर मानो ज़ोया और अबीर एक हसीन पल से बाहर निकल आए थे। ज़ोया अपने आप को अबीर के साथ ऐसे हालात में देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अबीर भी उसके नीचे लेटा हुआ अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आया था। उसके लिए भी उस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन थी। फिर तभी ज़ोया उठी और जल्दी से चादर लपेटती हुई भागकर बाजू वाले कमरे में चली गई थी और उसने अंदर से खुद को लॉक कर लिया था। ज़ोया को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करने जा रही थी। अगर अबीर का फ़ोन नहीं बजता तो ज़ोया ने खुद को दो चाटे मार लिए थे और बुरी तरह से अपने बालों को मुट्ठी में भींच लिया था। ओ गॉड, ये क्या हो जाता मुझसे आज? एक और मर्द? नो नो नो, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? कैसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ सकती हूँ? ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया? ऐसी आधी नंगी सी हालत में उस अबीर के सामने चली गई और मुझे गिरना था तो क्या उसी के ऊपर गिरना था? ओ शिट शिट शिट। ज़ोया बड़ी ही झुलझुलाहट से अपने कमरे में टहलने लगी थी। उसने दो तीन बार अपने बाल भी नोच लिए थे। तभी ज़ोया के कमरे का फ़ोन बज उठा था। ज़ोया हैरान रह गई थी कि भला उसे कौन फ़ोन करेगा, वो भी इस नए घर में, वो तो किसी को जानती भी नहीं है। तभी ज़ोया ने सोचा, ज़रूर उस अमीर राठौड़ का फ़ोन होगा। इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी, इसको इतनी बातें सुनाऊंगी कि कभी मेरे आसपास नहीं भटकेगा। ज़ोया गुस्से में उबल रही थी और उसने गुस्से से फ़ोन उठाकर बोलना शुरू कर दिया था। आखिर आप समझते क्या है अपने आप को? जब आपको पता है मैं उस कमरे में हूँ तो क्या ज़रूरत थी मेरे पास आने की? मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे 10 मीटर दूर रहना, लेकिन नहीं, दूर रहना तो दूर की बात, आप तो सीधे मेरे ऊपर आ गए। ज़ोया के मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी बिना ये सोचे कि लाइन पर कौन है। जैसे ही ज़ोया थोड़ा सांस लेने के लिए रुकी, तभी फ़ोन से एक आवाज़ आई, हेलो ज़ोया, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तब ज़ोया का माथा ठनका और वो सोचने लगी थी कि ये तो अबीर नहीं है, फिर ये है कौन? तब ज़ोया संभलते हुए बोली, आप हैं कौन और आपको मेरा नाम कैसे पता? तब उस कॉलर ने कहा, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काफ़ी काम आएगी, इसके लिए आपको मुझसे मिलना होगा। ज़ोया हैरान रह गई और बोली, हेलो, हो कौन तुम और क्यों मिलूँ मैं तुमसे? मुझे कोई इन्फो नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, समझे तुम? तब वो आदमी फिर बोला, सोच लीजिए मिस ज़ोया, मेरे पास आपके जानी दुश्मन अरहम ठाकुर की डिटेल्स हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेगा, उसके बाद आप अपना बदला ले सकती हैं। जैसे ही ज़ोया ने अरहम का नाम सुना, उसका जिस्म एकदम से सुन्न हो गया था और वो मानो जैसे जम सी गई हो। तब वो आदमी फिर बोला था, मिस ज़ोया, अगर आपको जानना है कि इस वक्त अरहम ठाकुर कहाँ है तो आपको मुझसे मिलने आना होगा, वो भी कल ही, एड्रेस मैं आपको भेज दूंगा और हाँ, अकेले ही आना। ज़ोया अरहम का नाम सुनकर गुस्से से भर चुकी थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो तो अब केवल यही सोच रही थी कि कल उस आदमी से मिलकर वो अरहम को ढूंढ निकालेगी और उसे जान से मार डालेगी। ज़ोया ने सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी थी। उसके दिमाग में अगर अब कुछ चल रहा था तो वो था अरहम को मौत। वहीं दूसरी ओर ज़ोया को कॉल करने के बाद वो कॉलर अरहम की ओर देखने लगा था और बोला, बॉस, जैसा आपने कहा है मैंने कर दिया है, अब मैं जाऊँ? अरहम ने उसे जाने का इशारा कर दिया था। उसके कानों में ज़ोया की फ़ोन पर कही हुई बात गूंजने लगी थी। ज़ोया ने जो अबीर समझकर अरहम से बोला था वो सब अरहम ने सुना था वो सोच रहा था वो अबीर जोया के कमरे में क्या कर रहा था और उसके ऊपर क्यों था। ये सोच सोचकर उसके दिमाग की नसें फटने को तैयार हो रही थीं। और फिर वो सोचने लगा था, तुम परेशान मत होना जोया, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरी मोहब्बत में तो तुम नहीं आती, लेकिन मेरी नफरत में तुम जरूर खिंची चली आओगी। ये सोचकर वो हंसने लगा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर ने अरमान के मुंह से मर्डर के बारे में सुनने के बाद अपनी एक टीम लेकर लोनावला के लिए निकल चुका था और 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके वो लोनावला अरमान के फॉर्म हाउस में पहुंच चुका था। और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वे लोग अंदर गए तो उनमें से 2 लेडी ऑफिसर्स की तो चीख ही निकल गई थी। राजवीर ने भी अपने पूरे करियर में इतना ब्रूटली मर्डर नहीं देखा था। अब तो राजवीर को भी अरमान से वहशत सी होने लगी थी। अनुराधा की बिल्कुल न्यूड लाश अरमान के किचन में पड़ी हुई थी और उसके सर से सारा खून बहकर किचन से लेकर पूरे हॉल में फैल चुका था। अरमान ने अनुराधा को मारने के बाद उसके जिस्म पर, जो अनुराधा ने अपनी शर्ट पहन रखी थी, उसे खींच लिया था और उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया था। राजवीर ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी और कुछ लोगों को लगाकर वहाँ की सफाई करा दी थी। राजवीर ने घोषित कर दिया था कि कुछ लुटेरों ने लूटने के बहाने से अनुराधा का मर्डर कर दिया था और अब ये न्यूज़ आज की हॉट टॉपिक बन चुकी थी। हर जगह केवल यही न्यूज़ चलाई जा रही थी। और जैसे ही शमशेर जी को ये न्यूज़ मिली तो उनके तो होश ही उड़ गए थे और अनुराधा की मौत का सुनकर उनकी आंखों के किनारे भीग चुके थे और उन्होंने मन ही मन अनुराधा के हत्यारों को सज़ा दिलाने का फ़ैसला कर लिया था। और कुछ सोचकर वो राजवीर को फ़ोन करने लगे थे। वहीं अरमान ने भी वो न्यूज़ देख ली थी। बार बार टीवी पर अनुराधा का चेहरा दिखाई दे रहा था। अरमान को ऐसा लग रहा था मानो वो टीवी स्क्रीन से भी उसे ही देख रही हो। अरमान गुस्से से एक गमला उठाकर टीवी पर दे मारता है, जिसकी वजह से पूरा एलईडी टीवी गिरकर चकनाचूर हो जाता है। और अरमान गिल्ट में जलता हुआ अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। अरमान को अनुराधा की मौत का रत्ती भर भी गिल्ट नहीं था। अगर उसे किसी बात का गिल्ट था तो वो था उसका जिस्म, जिसे अनुराधा ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया था। अरमान जोया के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था और आज अनुराधा की वजह से उसके जिस्म ने किसी और औरत के जिस्म को छुआ था। बस यही बात उसे खाए जा रही थी।
वहीं मेहर की तबीयत अब पहले से बेहतर थी और जैसे ही उसे ये खबर मिली कि अरमान आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए उसके कमरे की ओर चल दी थी। और जैसे ही वो हॉल में गई, उसने देखा पूरी की पूरी एलईडी टूटी पड़ी हुई थी, उसका कांच पूरे हॉल में फैला हुआ था। तभी मेहर को अरमान के कमरे से उसकी किसी से बात करने की आवाज़ बाहर तक सुनाई देने लगी थी। मेहर ने हल्का सा झाँक कर देखा तो उसने पाया अरमान किसी से बेहद गुस्से में बात कर रहा था। हाँ, मैंने उसके सर पर पूरे 40 बार वार किया था। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई थी, समझे तुम? और मैंने तुम्हें कहा था ना, इस केस को रफा दफा करो और सब कुछ खरीद लो। मैं नहीं चाहता उस औरत के साथ मेरा नाम दूर दूर तक कहीं भी जुड़े, समझे तुम? और हाँ राजवीर, एक बात का ख्याल रखना, भूल कर भी ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि उस औरत की लाश अरमान ठाकुर के फॉर्म हाउस से मिली है। मेहर जैसे जैसे अरमान की सारी बातें सुन रही थी, उसका जिस्म बेजान सा होता जा रहा था और फिर वो बिना अरमान से मिले अपने आप को जैसे तैसे घसीटती हुई अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अबीर को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना फ़ोन ऑफ क्यों नहीं किया था, और इस वक्त जिसने भी मुझे फ़ोन किया है उसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अबीर ने देखा उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ ने फ़ोन किया था। अपनी सौतेली माँ का नंबर देखकर उसका पारा हाई हो चुका था, लेकिन इस वक्त उसने फ़ोन क्यों किया ये सोचकर अबीर ने उसे वापस कॉल कर लिया था। पहली ही रिंग में उसकी सौतेली माँ ने उसका फ़ोन उठा लिया था। अबीर गुस्से में भर कर बोला था, बोलिए क्यों फ़ोन किया है आपने? पैसे ख़त्म हो गए हैं क्या आपके? बताइए कितने पैसे चाहिए? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। तब अबीर फिर बोला था, बोलिए कितने पैसे चाहिए आपको? तभी उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगी थी। अबीर उस औरत को रोता देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार उस औरत को रोते हुए सुना था। अबीर इस बार थोड़ा नरम होकर बोला था, क्या हुआ है बोलिए। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा था, अबीर बेटा एक बार तुम घर आ जाओ मुझसे मिलने, कल सुबह मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। अबीर का मन काफ़ी सारे सवालों से घिर चुका था, क्योंकि उस औरत ने पहली बार उसे बेटा कहा था। वेल, अबीर इन्हीं उधेड़बुन में सवार होकर सो चुका था और उसने सोच लिया था कि वो उस औरत से एक बार ज़रूर मिलेगा।